24 नवंबर शुक्रवार का दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। मिस्र में मस्जिद पर चरमपंथी हमले में कम से कम 115 लोगों की मौत। नजरबंदी से रिहाई के बाद हाफिज सईद ने अपने समर्थकों को संबोधित किया, भारत ने चिंता जताई।
अब उनके खिलाफ यहाँ केस नहीं है, किसी तरह का भी कोई केस नहीं है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, तो लिहाजा मुश्किल में है हुकूमत भी।
राजस्थान में किले की दीवार से पद्मावती के नारों के साथ शव लटका मिला और विवेचना में चर्चा कांग्रेस के दिवंगत नेता राजेश पायलट की।
संजय जी का फोन गया, तुम सबसे पहले वहाँ जाओ, कचहरी में नाम बदलो अपना। तो वहाँ पे हमने एफिडेविट वगैरह दे के इन्होंने राजेश्वर प्रसाद से राजेश पायलट नाम करवाया, फिर तो सब लग गए साथ में, बहुत जोर शोर से नॉमिनेशन किया।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। मिस्र से मिल रही खबरों के अनुसार सिनाई प्रांत में एक मस्जिद पर हुए हमले में कम से कम 115 लोगों की मौत हो गई है। हमले में 120 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा है कि अल अरीश में मौजूद गांव अल रावदा में हथियारधारी लोग मस्जिद में घुस आए और उन्होंने मस्जिद के भीतर बम धमाका किया। एक रिपोर्ट के अनुसार हमले का निशाना जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आए सुरक्षा बलों के जवान थे। बताया जा रहा है कि हथियारधारियों ने उन एम्बुलेंस पर भी गोलियां चलाई जो घायलों की मदद के लिए वहां पहुंचे थे। हमले के बाद मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने एक आपातकालीन सुरक्षा बैठक बुलाई। सरकार ने 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति इमरसन मनंगावा ने पद संभालने के बाद देश की आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपनी योजना की रूपरेखा देश के सामने पेश की है। उन्होंने वादा किया कि वो देश में नए रोजगार पैदा करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और देश में विदेशी निवेश लाएंगे। अपने भाषण में उन्होंने देश के पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को भी याद किया। उन्होंने मुगाबे को सम्मान देते हुए कहा कि देश के गठन में उनका योगदान उल्लेखनीय है और इसे भुलाया नहीं जा सकता।
Whatever errors of commission or omission that might have occurred,
उस नाजुक दौर में जो भी गलतियां या चूक हुईं, लेकिन साथ ही हमें देश के निर्माण में रॉबर्ट मुगाबे के बहुमूल्य और जरूरी योगदान को स्वीकार करना होगा। मेरे लिए निजी तौर पर वो एक पिता की तरह हैं, एक मार्गदर्शक की तरह, एक कॉमरेड की तरह जिनके साथ मैं कई कदम चला, और वो मेरे नेता की तरह हैं। हमें उनका धन्यवाद करना होगा और ये भरोसा करना होगा कि इतिहास में उन्हें वही स्थान मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। हमारे लिए वो हमारे देश के संस्थापक हैं, हमारे देश के नेता। जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति इमरसन मनंगावा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील ने पैरालंपिक एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस को दी गई सजा को दोगुना कर दिया है। ऑस्कर पर उनकी गर्लफ्रेंड रीवा स्टीनकैम्प की हत्या का आरोप है। इस मामले में सरकार ने अपील की थी कि ऑस्कर को दी गई 6 साल की सजा कम है। उन्हें अब 15 साल की सजा सुनाई गई है, जो दक्षिण अफ्रीका में इस अपराध के लिए दी जाने वाली सबसे कम सजा है। रीवा के माता पिता का कहना है कि उन्हें लगता है कि वो अब अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।
We felt that we didn't have justice for Reva, but that's too lenient a sentence. But now we have justice for her.
रीवा की माँ जून स्टीनकैम्प कह रही हैं, हमें लग रहा था कि हमें अपनी रीवा के लिए न्याय नहीं मिला। उन्हें जो सजा मिली थी वो कम थी, हमें अब न्याय मिला है। रीवा के पिता बैरी स्टीनकैम्प ने कहा, मुझे लग रहा है कि अब हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ये सब अब खत्म हो गया है। और मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि हमें न्याय नहीं मिला, आज हमें न्याय मिला। कर्नाटक के उडुपी में हो रही 2 दिवसीय धर्म संसद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मंदिर अयोध्या में विवादित जगह पर ही बनेगा। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम केवल राम मंदिर बनाएंगे और कुछ नहीं, और ये मंदिर उसी स्थान पर बनाएंगे जहां राम का जन्म हुआ था। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर ने कहा है कि वो अगले सप्ताह मौजूदा चांसलर एंगेला मर्कल और गठबंधन सरकार में उनके सहयोगी रह चुके सोशल डेमोक्रेटिक्स के मार्टिन शुल्ट्स के साथ बैठक करेंगे। हाल में हुए चुनावों के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने मर्कल की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक्स पार्टी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स पार्टी ने सोमवार को कहा था कि अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन सरकार बनाने की उनकी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी रेडियो है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर संदीप सोनी के साथ। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी फेसबुक पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। कार्यक्रम की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से कर रहे हैं। मिस्र में एक मस्जिद पर चरमपंथी हमला हुआ है जिसमें कई लोग हताहत हुए हैं। मृतकों की संख्या 100-125 से ज़्यादा बताई जा रही है और लगभग इतने ही लोगों को घायल बताया जा रहा है। बीबीसी हिंदी की वेबसाइट पर इस समय ये खबर सबसे ऊपर लगी है। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी मोहनलाल शर्मा स्टूडियो में मौजूद हैं।
संदीप, जो हमला हुआ है मिस्र में उत्तरी प्रांत सिनाई है, वहाँ पर एक मस्जिद है जहाँ पर यह चरमपंथी हमला हुआ। सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस हमले में कम से कम अब तक 115 लोग मारे जा चुके हैं जबकि 120 से ज़्यादा लोग घायल हैं। स्थानीय खबरें जो मिली हैं उसके मुताबिक संदिग्ध चरमपंथियों ने मस्जिद में पहले बम से हमला किया और उसके बाद गोलीबारी की। समाचार एजेंसी AP ने स्थानीय पुलिस के हवाले से कहा है कि 4 गाड़ियों में सवार होकर आए हथियार बंद लोगों ने नमाज पढ़ रहे लोगों पर अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। और इस दरमियान प्रत्यक्षदर्शियों ने मिस्र की मीडिया से कहा है कि अल आरिश के करीब अल रावदा की मस्जिद में यह घटना घटी है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लगता है कि चरमपंथियों के निशाने पर सुरक्षा बलों के समर्थक थे जो कि मस्जिद में उस समय नमाज पढ़ रहे थे। मिस्र का एक TV न्यूज़ चैनल है, वो है एक्स्ट्रा न्यूज़। उसके मुताबिक राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने सुरक्षा अधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई है। अभी तक महत्वपूर्ण बात यह है संदीप कि इस हमले की किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ हफ्ते पहले सिनाई में ही मिस्र के सैनिकों पर एक बड़ा चरमपंथी हमला हुआ था और ये भी बात बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से सही है कि मिस्र का ये जो इलाका है वो इस्लामी चरमपंथ से जूझ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी को हटाए जाने के बाद से इस इलाके में जो चरमपंथी हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। संदीप,
मिस्र में मस्जिद पर चरमपंथी हमले में कम से कम 115 लोगों की मौत, ब्यौरा दे रहे थे मोहनलाल शर्मा। और यरूशलम से वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर मिश्रा टेलीफोन लाइन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हरिंदर मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे मिस्र के जिस इलाके में ये हमला हुआ है वो इस्लामी चरमपंथ से जूझ रहा है, किस गुट का हाथ हो सकता है इस हमले के पीछे, कुछ शुरुआती संकेत?
देखिए, किसी भी गुट का नाम तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर पिछले जितने भी हमले हुए हैं उन सभी हमलों में यहाँ पर वहाँ एक संगठन है विलायत सिनाई का नाम के नाम से, जिसका पहले नाम जो है उसका नामकरण लगातार वो बदलता रहा है वहाँ के माहौल के अनुसार। पहले उसे अंसर बैत अल मकदीस कहते थे, अब विलायत सिनाई, और उसने कहा है कि वो इस्लामिक स्टेट का जो है वो समर्थक है, अपने आप को इस संगठन ने इस्लामिक स्टेट का समर्थक बताया है। तो अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसी तरह के जो संगठन जिन्होंने जो इस्लामिक स्टेट के साथ जुड़े हुए माने जा रहे हैं उनमें से ही किसी का हाथ हो सकता है, क्योंकि वहां पर अभी तक 50 से भी अधिक हमले जो हैं हो चुके हैं पिछले 4 सालों के दौरान, और लगभग हमेशा इन्हीं संगठनों ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की है।
हरिंदर, इसी सवाल पर हम आ रहे थे कि मिस्र और आसपास के देशों के लिए इस तरह के हमले कितनी बड़ी चुनौती बन गए हैं?
जी, जो सिनाई का जो हिस्सा है वो दरअसल न सिर्फ मिस्र के लिए बल्कि इसराइल के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती का सामना है वहां पर, क्योंकि वहां से कई बार रॉकेट हमले भी हो चुके हैं इसराइल पर। इसराइल हमेशा कहता रहा है कि ये जो इलाका है उसको पूरी तरह से मिस्र को जो है मिस्र की जो सेना है उसको अपने कब्जे में लेना होगा, क्योंकि वहां पर टनल्स, वहां पर सुरंग पहले जो है काफी बने हुए थे। मिस्र की सेना ने बहुत सारे सुरंग जो हैं उनको वहां पे तबाह कर दिया, उसको खत्म कर दिया, यहाँ तक कि वहां पर समुद्र से पानी तक कई सुरंगों में जो है मिस्र की सेना ने डाला, जिससे कि वो रास्ता जो है बंद हो जाए, क्योंकि वहां से हथियार का जो है हथियार गजा भेजा जा रहा था, वहां से हथियार जो है वो दोनों ही प्रांतों में जा रहा था, गजा से सिनाई, सिनाई से गजा। तो ये जो हिस्सा है दरअसल ये कई इलाकों को जोड़ता है, और इसलिए ये बहुत बड़ी चुनौती है दोनों ही देशों के लिए, इसराइल और मिस्र के लिए।
यरूशलम से वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर मिश्रा जानकारी दे रहे थे। मिस्र में जो मस्जिद पर अभी चरमपंथी हमला हुआ है जिसमें 115 लोग कम से कम मारे गए हैं, इस तरह के हमले मिस्र और आसपास के देशों के लिए, पूरे इलाके के लिए कितनी बड़ी चुनौती है।
खबर सच है, अगर बीबीसी पर है।
दिन भर में अगली खबर, पाकिस्तान से भारत और अमेरिका में चरमपंथी हमलों की कथित साजिश रचने के अभियुक्त जमात उद्दावा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद अपनी नज़रबंदी खत्म होने के बाद आज लाहौर में एक मस्जिद में नजर आए हैं, जहां उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित भी किया है। इस खबर पर और जानकारी के साथ लाहौर से बीबीसी संवाददाता उमर दराज।
जमात उद्दावा के मकामी मरकज जामिया कादसिया में ये मंजर नया नहीं है। ताहम जमात उद्दावा के सरबरा हाफिज सईद इस मरतबा 10 माह के बाद यहाँ वापस लौटे हैं। गुज़िश्ता रात ही उनकी हालिया नज़रबंदी खत्म की गई थी।
माजी में भी हाफिज सईद को कई बार गिरफ्तार किया गया है, हर बार उन्हें अदालती हुक्म पर रिहा किया जाता रहा है। तो सवाल ये है कि उन्हें बार बार गिरफ्तार क्यों किया जाता है और अदालती हुक्म पर वो कैसे और क्यों रिहा हो जाते हैं?
जमात उद्दावा के डेप्यूटी सेक्रेटरी कम्युनिकेशन अहमद नदीम ने बीबीसी को बताया कि हुकूमत उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं दे पाई।
अदालत बार बार ये कहती रही कि अमन व अमान का कोई मसला है, इनके खिलाफ कोई सबूत है तो दस्तावेजी सबूत पेश किया जाए, मगर 10 माह में कोई दस्तावेजी सबूत, कोई वाज़ह चीज़ हुकूमती वकला की जानिब से पेश नहीं हो सकी और नज़रबंदी में तोसी की दरख्वास्तें बार बार की जाती रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि हाफिज साहब सरखुरू हुए हैं।
इंडिया हाफिज सईद को सन 2008 के मुंबई हमलों का जिम्मेदार ठहराता है, जबकि अमरीका और अक्वामे मुत्तहिदा की जानिब से उनकी जमात को दहशतगर्द तंजीमों में शामिल किया गया है। माहिरीन का कहना है कि यही बैरूनी दबाव हाफिज सईद की बार बार गिरफ्तारी का सबब बनता है। तज्जिया निगार इम्तियाज आलम कहते हैं कि एक मरतबा फिर पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा, मगर वो एक मुश्किल सूरत हाल में फंसी है।
भारत भी दुनिया भर में इस मसले को उठाता है, खासतौर मुंबई के हवाले से जो वहाँ पे दहशतगर्दी हुई थी, लेकिन यहाँ जब गिरफ्तार किया जाता है या नज़रबंद किया जाता है हाफिज साहब को, तो वो करते हैं सेफ्टी कवानीन के तहत। अब उनके खिलाफ यहाँ केस नहीं है, किसी तरह का भी कोई केस नहीं है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, तो लिहाजा मुश्किल में है, हुकूमत भी मखमसा है।
रवां बरस जनवरी में हाफिज सईद को इंसदादे दहशतगर्दी के कानून के तहत नज़रबंद किया गया था। जमात उद्दावा और उसकी फलाही तंजीम फलाह इंसानियत फाउंडेशन को वॉच लिस्ट पर रखा गया था। ताहम हाफिज सईद एक मरतबा फिर अदालती हुक्म पर बरी हो गए।
दिन भर में अब रुख कर रहे हैं भारत का। भारत में राजस्थान में जयपुर के नाहरगढ़ किले की प्राचीर से पद्मावती के नारों के साथ एक लाश मिली है, जिससे सनसनी फैल गई है। ये शव किले की दीवार से लटका मिला है। पुलिस इस मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। जयपुर से नारायण बारेट की रिपोर्ट।
यूं तो महज ये एक अपराध की घटना थी, लेकिन शव के पास पत्थरों पर लिखी पद्मावती की इबारत ने मामले को पेचीदा बना दिया। पुलिस मौके पर पहुंची तो नाहरगढ़ की प्राचीर से एक शव लटका मिला। ब्रह्मपुरी थाने के थाना अधिकारी रामकिशन विश्नोई ने बीबीसी से कहा, शव की शिनाख्त चेतन सैनी के रूप में हुई है, वो जयपुर में ही नगीना घिसाई का काम करता था। पुलिस अभी ये नतीजा नहीं निकाल पाई है कि यह हत्या है या आत्महत्या। मौके पर पहुंचे एक पुलिस अधिकारी मीडिया से मुखातिब हुए और जानकारी दी।
बॉडी हमने जहाँ लटकी हुई थी वहाँ से रिकवर कर ली। ये दीवार के बाहर की तरफ लटकी हुई थी और एक प्लास्टिक की रस्सी गले में बंधी हुई है, उससे लटकना इसका उस टाइम पर पाया गया। अभी चेतन नाम से इनकी पहचान हो रही है, कुछ लिखावट सामने आई है, वो काले जो एक कोयला होता है उससे लिखा हुआ है, बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, इसलिए अभी उसको पढ़ने में भी समस्या उसमें है, लेकिन ये नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरफ है, ये नहीं बता सकते। उसमें लिखा हुआ है तांत्रिक, चेतन तांत्रिक ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है उसमें, लेकिन उसके बैकग्राउंड के बारे में अभी जाँच की जाएगी।
घटना स्थल पर कोयले से चेतन तांत्रिक और पद्मावती का विरोध करने वालों हम पुतले लटकाते नहीं हैं कि इबारत लिखी थी। चित्तौड़ के इतिहास में राजा रतन सिंह के दरबार में भी एक राघव चेतन तांत्रिक का जिक्र है, जो अलाउद्दीन खिलजी से जा मिला था। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना था कि चेतन बहुत नेक इंसान था, उसके दो बच्चे यतीम हो गए। इस घटना पर पद्मावती फिल्म का विरोध कर रहे संगठन भी हैरान है। करनी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेडी कहते हैं,
अपनी रंजिश निकालने के लिए किसी ने ये कोई घटना की और उसको इधर भटका रहे हो मामले को। अब हो सकता है इसमें पुलिस जांच हो जाए, उसके बाद हम जो भी एक्शन होगा वो लेंगे, पर पहले पुलिस जांच जरूरी है।
अरावली की पहाड़ियों पर बना नाहरगढ़ किला 700 फीट की ऊंचाई से जयपुर को निहारता नजर आता है, लेकिन इस घटना के बाद इलाके के लोग इस किले को निहार रहे थे और कह रहे थे, ऐसा क्यों हुआ। नारायण बारेठ, बीबीसी जयपुर।
राजपूतों की करड़ी सेना ने संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने भी पद्मावती का विरोध किया है। फिल्मों और कहानियों पर विवाद से क्या हासिल होता है, इस बार बीबीसी इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 25 नवंबर को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 या फिर 1800 102 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ कार्यक्रम में वक्त अब विवेचना का। 80 के दशक में भारत के राजनीतिक क्षितिज पर तेजी से उभरने वाले युवा नेताओं में से एक थे राजेश पायलट। हाल ही में उनकी पत्नी रमा पायलट ने राजेश पायलट की जीवनी लिखी है, जिसमें उनकी किसान पुत्र से एयरफोर्स पायलट और फिर राजनेता बनने तक की कहानी को बड़े ही दिलचस्प ढंग से बताया गया है। आज की विवेचना में रेहान फजल नज़र डाल रहे हैं राजेश पायलट के जीवन से जुड़े कुछ रोचक प्रसंगों पर।
सालों पहले दिल्ली के पॉश 112 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड की एक कोठी के आउटहाउस में एक 10 साल का लड़का रहा करता था। गर्मी हो या जाड़ा या बरसात, वो रोज सुबह 4 बजे उठा करता, अपने चचेरे भाई नथी सिंह की डेयरी के मवेशियों को चारा खिलाता, उनका गोबर साफ करता, दूध दुहता और फिर दिल्ली के वीआईपी इलाकों की कोठियों में दूध पहुंचाता। उसका नाम था राजेश्वर प्रसाद बिधूरी, जो बाद में राजेश पायलट के नाम से मशहूर हुआ। राजेश पायलट की पत्नी और उनकी जीवनी राजेश पायलट अब बायोग्राफी लिखने वाली रमा पायलट बताती हैं।
उन्हीं कोठियों में, जिन कोठियों में राजेश जी मंत्री बनकर रहे, उन्हीं कोठियों में राजेश जी ने दूध बेचा और उन्हीं कोठियों के पीछे से जब माली घास काटते थे तो भैंसों के लिए बोरी में भर भर के घास भी लाया करते थे। एक दिन का वाक्य मुझे याद है, हमारी कोठी में पीछे माली घास काट के और वो बोरी में भर रहे थे तो बहुत जोर लगा लगा के नीचे दबा रहे थे। तो मैंने राजेश को कहा, मेरे को देखो कितने लालच आ रहा है इनको, कैसे उसको मतलब तबाह तबाह के भर रहे हैं। कहते हाँ, मैं भी क्या करता था, जब मैं ऐसे घास ले जाता था इनसे मांग के, तो मैं तो बोरी में खुद खड़ा हो जाता ताकि वो नीचे दब जाए और ज़्यादा इसमें घास आ जाए।
दूध बेचने के साथ साथ राजेश्वर प्रसाद मंदिर मार्ग के म्यूनिसिपल बोर्ड स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे थे। उस स्कूल में उन्हीं की कक्षा में पढ़ने वाले और ताउम्र उनके दोस्त रहे रमेश कौल बताते हैं।
आपको आश्चर्य होगा कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था उस वक्त, जब राजेश और हम क्लास 8 से थे आए, ये रहते थे बंगलों में, क्वार्टर्स होते हैं पीछे आपकी, जो काम करते हैं घरों में वगैरह वो रहते हैं उनमें, तो ये भी उनके कजन वहाँ रहते थे क्वार्टर्स में, तो ये भी वहीं रहते थे और वहाँ से पैदल आते थे स्कूल। हम एक ही सेक्शन में थे और एक ही क्लास में, तो हम काफी अच्छे दोस्त हो गए थे। पीछे से ये आर्थिक स्थिति इनकी काफी कमजोर थी।
दिलचस्प बात यह है कि स्कूली पढ़ाई खत्म होने के बाद राजेश्वर प्रसाद और रमेश कौल के बीच संपर्क खत्म हो गया। सालों बाद उनकी मुलाकात तब हुई जब उन्होंने साथ साथ भारतीय वायुसेना के लिए क्वालिफाई किया। रमेश कौल बताते हैं कि वहां भी अपने करियर की शुरुआत में ही वो वायुसेना अध्यक्ष बनने के ख्वाब देखा करते थे।
जब अर्जन सिंह जी आए तो उस टाइम भी ये कहने लगे कि मैं इसकी जगह पहुंच जाऊंगा एक दिन, कि मैं भी यहाँ पे लोगों के बैज लगाऊंगा, जैसे कि अर्जन सिंह जी लगा रहे थे, हमें विंग्स लगा रहे थे और स्ट्राइप लगा रहे थे शोल्डर पे, वो कहने लगे कि मैं एक दिन ये भी मैं भी लगाऊंगा इसी तरह, कैडेट्स को कमीशन करूंगा। ये कैजुअली सब कुछ कहते थे। एयरफोर्स में वीआईपी आते थे तो ये भी कहते थे, भाई एक दिन मैं भी ऐसे जहाज में आऊंगा और आप मेरे को रिसीव करोगे।
राजेश्वर प्रसाद ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया, लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें लगने लगा कि समाज में बदलाव लाने के लिए उन्हें राजनीति में जाना चाहिए। तभी 1980 के लोकसभा चुनाव आ गए। उन्होंने मन बनाया कि वो वायुसेना छोड़कर लोकसभा का चुनाव लड़े। रमा पायलट बताती हैं।
पहले तो रिजाइन ही नहीं हो रहा था। रिजिग्नेशन के लिए उस वक्त पे बेगम आबिदा के पति राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनको इन्होंने सारा किस्सा सुनाया कि सर ऐसे 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 ऐसे, एंड इफ़ यू आर काइंड एनफ तो मेरे लिए तो मतलब आप भगवान हैं ही, अगर आप ये कर देंगे तो। उन्होंने को पता नहीं क्या मन में आया, उन्होंने लिख दिया। वहाँ से देकर जाएँ सीधे आए मैडम गांधी के पास। वो उस वक्त थी 12 विलिंगडन क्रेसेंट में। मैडम, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, मैं सो एंड सो हूँ और मुझे अब जो है चुनाव लड़ना है चौधरी चरण सिंह के खिलाफ बागपत से। तो मैडम सुनती नहीं, फिर ऐसे देखती नहीं, कहाँ से लड़ना? जी बागपत से लड़ना है चौधरी चरण सिंह के खिलाफ। तुम्हें पता है वो प्रधानमंत्री थे? जी मुझे पता, मैं मेरे इलाके के हैं, मैं जानता हूँ। तुम कह के आ रहे हो राजेश, तुम्हें पता है? जी मैडम। कहते हैं मैं तुमको ये सलाह नहीं दूंगी कि तुम इसमें आओ, जहाँ तुम हो वहाँ बहुत अच्छे हो, तुम्हारा अच्छा फ्यूचर है, तुम्हारी बढ़िया नौकरी है। लेकिन मैडम मैं तो सिर्फ पूछने नहीं आया, आशीर्वाद लेने आया हूँ, रिजाइन तो मैंने कर दिया। तो मैडम ने कहा देखते हैं।
लेकिन कांग्रेस आई की शुरू की लिस्ट में राजेश्वर प्रसाद का नाम नदारद था। एक दिन इंदिरा गांधी दक्षिण भारत के चुनाव प्रचार पर जा रही थी। राजेश्वर प्रसाद और उनकी पत्नी ने तय किया कि वो उन्हें छोड़ने हवाई अड्डे जाएंगे।
मैं लास्ट में थी सबसे। तो अच्छा तो मैंने कहा मैडम नमस्कार, ठीक है, उन्होंने ऐसे कहा। नेक्स्ट डे राजेश जी अपने ऑफिस में चले गए कुछ और फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। मैं घर पे थी तो एक फ़ोन बजा, बहुत बजे जा रहा था सुबह से, मैंने उठा लिया, मेरे के लिए देख लेते उठाए। हेलो, मैंने कहा हेलो जी, राजेश जी हैं? मैंने कहा जी नहीं है, उनकी वाइफ है? मैंने कहा जी नहीं, वो भी नहीं है। तो और कोई है? मैंने कहा हाँ जी, मैं आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा जी मैं तो एक रिश्तेदार आई हूँ उनके यहाँ, वो बोल रही हूँ। तो कहते अच्छा आप हमारा मैसेज दे दोगे? मैंने कहा हाँ जी मैं मैसेज दे दूँगी। तो आप उनसे ये कहिएगा कि उनको संजय जी ने बुलाया है। अब थप्पड़ 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 होने लगी मेरे पेट में कि कैसे जल्दी से बुलाऊँ, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। और मुझे लगे कि ये क्यों इतनी देर लगाने, क्यों नहीं आ रहे जल्दी से, क्यों नहीं आ रहे जल्दी से। जैसे आए स्कूटर खड़ा करके, स्कूटर ऑफ नहीं किया, मैं वहीं पहुँच गई। चलो चलो वहाँ चलना, संजय जी ने बुलाया। संजय जी ने इनको बुलाया, भाई आपके लिए इंदिरा जी का संदेश आया है और ये कहा है कि आपको मैं ये कहूँ कि आप भरतपुर से जाकर चुनाव लड़ो। अब तो फुलझड़ियाँ तो खिल गई, लेकिन एकदम से सत्ते में आके भरतपुर कहाँ है, अब पूछे कौन? तो चुप करके सुन के वापिस आ गए। भरतपुर में इनको सब लोगों ने बहुत चलाया, मतलब ऐसा करना चाह रहे थे कि सिंबल का टाइम निकाल दें और इसको सिंबल ला दें और नॉमिनेशन उनसे भरवा दें हम, मतलब जिनको उन्हें देना था उनसे पहले ही भरवा दें, बिना टिकट के नॉमिनेशन करवा दिए, टिकट सिकट डिक्लेयर नहीं हुआ। और ये डिले करते गए कि भाई ये इसी में आ जाए, मगर ये समझ गए होशियार बंदे थे।
जब राजेश भरतपुर पहुंचे तो किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। तभी संजय गांधी का उनके पास फोन आया।
वहाँ गए तो वहाँ कोई इनकी बात ही ना पूछिएगा, तू कौन है भैया? हमें तो किसी पायलट के लिए कहा गया, हम तो उसका नॉमिनेशन भर जाएगा, हम नहीं किसी को पूछते। इन्होंने बेचारा ने भतेरा का भी मैं ही वो पायलट पर नहीं, भैया हमें संजय जी का फोन आया, कोई पायलट आ रहा है उसके साथ जाएंगे हम। तब संजय जी का फोन गया कि तुम सबसे पहले वहाँ जाओ, कचहरी में नाम बदलो अपना। फिर ये कचहरी में गए तो वहाँ पर अपने एफिडेविट वगैरह दे के इन्होंने राजेश्वर प्रसाद से राजेश पायलट नाम करवाया। फिर संजय जी ने कहा कि भाई ये जो आपसे कह रहा है लड़का यही राजेश पायलट है। फिर तो सब लग गए साथ में और धना बहुत जोर शोर से नॉमिनेशन किया।
चुनाव प्रचार के लिए पैसे जमा करने में पायलट दंपत्ति को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी बड़ी मुश्किल से उन्हें एक बहुत मामूली रकम देने के लिए तैयार हुए।
आनंद लोक काफी दूर है 24 अकबर रोड से और वहां से यहाँ तक कोई बस आती नहीं है। और थ्री व्हीलर लेता था वहां से 15 रुपए आने के, 15 रुपए जाने के, 30 रुपए एक चक्कर के। अब मैं इनके पास रोज आऊँ और रोज मुझे टड़का दें, रोज आऊँ रोज टड़का दें। अब मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे पैसे कैंडिडेट हैं, हम आगे पैसे देने कहाँ हैं हमारे पास पैसे, पार्टी पावर में नहीं है, तुम पैसे की बात करती हो, हम तो ले रहे हैं लोगों से पैसे। तो मैं उम्र भी छोटी थी, मैंने कहा अभी तो आप इतने बड़े बड़े ट्रंक ला रहे हो, सबको तो दे रहे हो, कहाँ दिया हमने, किसके सामने दिया? अच्छी अच्छी औरतें निकले उसके कमरे में से, मैंने कहा ये सब तो निकलने खुश हो गए, इनको पैसे मिले तब निकले, मुझे क्यों नहीं दे रही। एक दिन में तो मैं आनंद लोक से और अकबर रोड तक 5 बार आई, 5 बार पैदल, फिर भी नहीं दिए। फिर एक दिन लास्ट में जाके देखिए हमारे पास ये 10,000 रुपए हैं, फिर इनको ले लीजिए आप और जाइए यहाँ से। मैंने कहा चलो वही दो जो है।
सांसद बनने के बाद उन्होंने तुरंत कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान अपनी तरफ खिंचवाया। जब 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें भूतल राज्य मंत्री बनाया गया। उनके शुरू के ही तेवर से लग गया था कि राजेश पायलट एक स्टीरियोटाइप राजनीतिज्ञ नहीं है। उनके निजी सचिव रहे और बाद में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने RS बुटोला बताते हैं।
उन दिनों दिल्ली में जो है चक्का जाम DTC की स्ट्राइक होती थी अगर आपको याद हो, उसके प्रिपरेशन के लिए तो पायलट साहब ने कहा कि लेट अस हैव ए मीटिंग कि जिसमें इसकी कैसे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या हो होना चाहिए। तो उसमें जो DTC के चेयरमैन थे वो भी एक पुराने फौजी थे और हमें कहा कि आप होम सेक्रेटरी को भी पुलिस कमिश्नर को भी बुलवा लीजिए मीटिंग के लिए। तो जैसे गवर्नमेंट में होता है नोटिस वगैरह सबको दिए गए, सब लोग मीटिंग समय पर आए DTC के चेयरमैन साहब से कहा गया कि ये स्ट्राइक का नोटिस है और दिल्ली में जो है ये काफ़ी असुविधा हो जाती है, तो आप बताइए आपकी क्या प्लान है। DTC के चेयरमैन साहब का ये कहना था कि हमने पूरी जितनी भी दिल्ली में DTC की स्ट्राइक वगैरह हुई हैं, इस तरह की बातें हुई हैं, तो जो हमने एनालाइज़ किया है कि उसमें जो है प्रॉपर्टी का DTC की बसेस का बहुत डैमेज होता है डिपो में। तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि अब की बार हम अपने बसेस वगैरह को डिपो में रखें या जैसे भी कि उसको डैमेज ना हो पाए। तो पायलट साहब ने एक बात कही जो मैं कभी भूल नहीं सकता कि उन्होंने कहा कि उनका नाम लेके कि मिस्टर सच एंड सच यू आर चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड कम्यूटिंग सर्विसेज टू द पीपल ऑफ डेली but you are talking like a security person, why is the police commissioner here, why have we called him? उन्होंने कहा कि मिस्टर सच एंड सच what are you talking, your role is to provide services, you are talking about protecting your properties, this is not your job, your plan is that this is what I will do, this is where I will require security services, this is where I will require police protection, and this is how I will provide the transport service to the people of Delhi. That is what I expected from you, and you are not doing. So let's not have this meeting, you are not ready for this meeting. And we immediately cancel the meeting. And of course, after that, it's history.
Uttar Purv aur Kashmir, dono unke bahut priya vishay the. Kashmir mein saman sthiti lane ke liye, unhone edi choti ka zor lagaya. हालांकि वहां पर उन पर कई हमले भी हुए। उनके नजदीकी दोस्त रहे रमेश कौल बताते हैं।
मेरे को अलग से लोग आते थे मिलने की, इनको कश्मीर में अगर कोई सुनता है तो इनकी सुनता, और JKLF वगैरह वाले जो कि फर्स्ट बैच ऑफ टेररिस्ट थे, वो उनके जो मॉडरेट लोग थे वो इनसे हमेशा संबंध में रहना चाहते थे। कुपवारा वगैरह में तो इनकी सभाएं होती थी उस टाइम में, और 3 बारी इनके एम्बुश होने की कोशिश हुई है, बुलेट कार भी चली है, मगर लकीली मानना पड़ेगा कि जो उनके वहाँ लोकल ड्राइवर थे उन्होंने बड़ी सतर्कता दिखा के बचाया। एक बारी हम सोपोर तरफ गए थे, सोपोर में उस वक्त पीक मिलिटेंसी थी, टोटल कंट्रोल था, तो सोपोर के बाद बाहर एक पुल होता है, तो वहाँ कॉन्वॉय रोक दी गई, तो वहाँ से लोग आने लगे कि मत जाइए, ये बाहर आ गए। BJP ने मेरे को पर्सनली कहा, देखो बॉस इनको अंदर करो आप गाड़ी में, प्लीज पुश हिम इनसाइड द कार, क्योंकि कार बुलेट प्रूफ थी। और उस टाइम ऐसा माहौल था सोपोर के बाहर कि सोपोर के लोग आए, मतलब आम आदमी कहते हैं प्लीज आप मत ये ब्रिज को क्रॉस करो, और कहाँ कहाँ नहीं गए हम।
राजेश पायलट को भारतीय राजनीति में अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन मात्र 55 वर्ष की आयु में उनका एक सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन हो गया।
इनकी गाड़ी में बैठ गए थे एक MLA था, एक DCC प्रेसिडेंट था, 2-3 वर्कर थे, और इनके सिक्योरिटी वाले थे, खुद गाड़ी चला रहे थे, जिप्सी टाइप गाड़ी थी। दौसा से थोड़ा आगे जगह थी वो, वहाँ से दौसा में आए, दौसा एक आदमी एक वर्कर को उतारा, वहाँ गाड़ी रुकी, 4 किलोमीटर चल के एक और को उतारना था, फिर गाड़ी रोकी, उसको उतारा फिर, और वहाँ से कोई 4 किलोमीटर आगे चले वहाँ एक्सीडेंट हुआ। अब आप ये बताओ यहाँ से 4 किलोमीटर तक चल के कितनी तेज कर ली होगी उन्होंने गाड़ी। और फिर यूँ बताते हैं कि जैसे ऐसे गाड़ी आ रही थी और इधर से बस जा रही थी, तो इन्होंने जब यहाँ आ गई ना तो इन्होंने ओतरी ऐसे कहा, ओतरी करके इधर को गाड़ी काटी, तो बस भी इधर को कटती गई, इधर को कटती गई और इस तरफ से ऐसे मार के ले गई।
रमा पायलट कहती हैं कि मुझे आज भी नहीं लगता कि वो मेरे साथ नहीं है, मुझे हर समय अपने आसपास उनकी उपस्थिति महसूस होती है, कभी कभी तो मुझे ये महसूस होता है कि वो मुझसे कह रहे हूं कि ये करो या ये ना करो। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनेंगे।
BBC समाचार। मिस्र के सिनाई प्रांत में एक मस्जिद पर हुए हमले में कम से कम 184 लोगों की मौत हो गई है। हमले में 125 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की नमाज पढ़कर लौट रहे लोगों को हथियारधारियों ने निशाना बनाया। देश में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति इमरसन मनंगावा ने पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को सम्मान देते हुए कहा कि देश के गठन में उनका योगदान उल्लेखनीय है और इसे भुलाया नहीं जा सकता। कर्नाटक के उडुपी में हो रही 2 दिवसीय धर्म संसद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मंदिर अयोध्या में विवादित जगह पर ही बनेगा। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान और अनंत हमारे सहयोगी फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचा रहे थे। संदीप सोनी के साथ अब पूरी टीम को दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि।